आप सुन रहे हैं चोल राजवंश सिर्फ ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अंबुज के साथ। नमस्कार, चोल राजवंश के आठवें एपिसोड में हम चोल राजाओं के शासनकाल में मंदिर निर्माण कला की उत्कृष्टता की बात कर रहे थे, जिसमें आखिर में हमने सम्राट परांतक प्रथम के समय में बने श्रीनिवास नल्लूर के कोरंगनाथ मंदिर के संदर्भ में वास्तु और तक्षण दोनों दृष्टि से उत्कृष्ट कलाकृति की बात की थी। आगे हमने कहा था कि हम त्रिचनापल्ली के दो अद्भुत अद्वितीय पाषाण मंदिरों की बात करेंगे, तो आइए हम चोल राजाओं द्वारा बनवाए गए उन मंदिरों की बात करते हैं जिन कलाकृतियों का सारी दुनिया में आज भी कोई जोड़ नहीं है, जिन्हें देखकर आधुनिक निर्माण जगत के विश्व विख्यात निर्माता और आर्किटेक्ट अचंभित हैं। इनमें पहला है तंजौर का भव्य शैव मंदिर, जो बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजा राज प्रथम ने 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के बीच करवाया था। दूसरा मंदिर है गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदीश्वर मंदिर। राजा राज प्रथम के सुपुत्र सम्राट राजेंद्र चोल ने 1025 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे लंबा मंदिर है, जिसकी उत्कृष्ट कलाकृति को देखकर देखने वाला निःशब्द हो जाता है। ये मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य के उत्कर्ष का चरम जान पड़ता है, इसीलिए इसे द्रविड़ शैली का आदर्श स्मारक कहा गया है। राजेश्वर मंदिर चारों ओर से एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। विशाल प्रांगण, उत्तम ग्रेनाइट पत्थरों का अद्भुत उपयोग, मंदिर का आकर्षक गर्भगृह और गर्भगृह के ऊपर पश्चिम में बना हुआ लगभग 200 फीट ऊंचा विमान, इन सबको देखकर मन अनायास मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसका आधार मतलब बेस 82 वर्ग फुट का है। पिरामिड के आकार वाला 13 तल्ला यानी 13 मंजिला शिखर 190 फीट ऊंचा है। मंदिर का गर्भगृह 44 वर्ग फीट का है, जिसके ऊपर चारों दिशाओं में 9 फीट चौड़ा प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग है, जिन्हें बृहदीश्वर कहा गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर ताक में द्वारपालों की मूर्तियां उकेरी गई हैं, और बाहरी भाग में नंदी की विशाल एक आश्मक यानी मोनोलिथ मूर्ति है। कलात्मक सुंदरता और भव्यता की दृष्टि से ये मंदिर दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ हिंदू स्मारक है। ब्रिटिश इतिहासकार और पुरातत्वविद पर्सी ब्राउन का कहना है कि राजराजेश्वर मंदिर का विमान न सिर्फ द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम रचना है, बल्कि इसे संपूर्ण भारतीय स्थापत्य का मानक कह सकते हैं। गंगईकोंड चोलपुरम के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम के सुपुत्र सम्राट राजेंद्र चोल ने 1025 ईस्वी में करवाया था। इसकी संरचनात्मक विशेषताएं तंजौर के मंदिर जैसी ही हैं, पर इसकी कुछ बातें बिल्कुल भिन्न हैं। ये मंदिर 340 फीट लंबा और 110 फीट चौड़ा है, जिसका आधार 100 वर्ग फीट का है। आधार पर बना पिरामिड आकार का 8 मंजिला विमान 86 फीट ऊंचा है। विमान के ऊपर सुंदर गोल स्तूपिका है। पूर्व दिशा की ओर बने मुख्य द्वार के ऊपर विशाल महामंडप है। आप देखेंगे इस मंदिर की योजना भी तंजौर के मंदिर जैसी ही जान पड़ती है। गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर में भी मंडप और गर्भगृह को जोड़ते हुए अंतराल अर्थात स्पेस बनाया गया है, जिसके उत्तर और दक्षिण की ओर दो प्रवेश द्वार हैं, जिनसे होकर गर्भगृह में पहुंचा जा सकता है। मंडप अत्यंत ही सुंदर है, जो कि 250 पंक्तिबद्ध स्तंभों के आधार पर बना है। मंडप के स्तंभ बहुत ही आकर्षक हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां और सुंदर साज सजावट उकेरी गई हैं। कई जगहों पर तो ये तंजौर के मंदिर की अपेक्षा ज्यादा सुंदर और कलापूर्ण लगने लगता है। तंजौर और गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर चोल स्थापत्य के चरमोत्कर्ष के प्रतीक हैं। मंदिर के विमान निर्माण की भव्यता, तकनीक और साज सज्जा में द्रविड़ वास्तुकला की चरम सीमा स्पष्ट रूप से झलकती है। इन मंदिरों में चोल सम्राटों की महानता और उनकी गौरव गाथा की अनंत गूंज अनवरत सुनी जा सकती है। चोल साम्राज्य में नए नए मंदिरों का निर्माण कभी थमा नहीं, अनवरत चलता ही रहा। सम्राट राजेंद्र चोल के उत्तराधिकारियों ने भी मंदिर निर्माण की परंपरा को मिटने नहीं दिया, उसे दृढ़ता से बनाए रखा। राजा राज द्वितीय ने दारासुरम का ऐरातेश्वर मंदिर बनवाया तो कुलोत्तुंग तृतीय ने त्रिभुवनम का कंपहरेश्वर मंदिर। दोनों मंदिर अत्यंत भव्य और सुंदर हैं। ऐरातेश्वर मंदिर का शिखर 5 मंजिला है, जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल पत्थरों की जगह ईंटों से बनवाई गई है। विमान के सामने मंडप और उसके आगे अग्र मंडप बने हुए हैं। ये देखने में पहियेदार रथ जैसे हैं, जिन्हें हाथी खींच रहे हैं। कालांतर में इस मंदिर का प्रभाव कोणार्क के सूर्य मंदिर पर पड़ा। त्रिभुवनम के कंपहरेश्वर मंदिर को त्रिभुवनेश्वर भी कहा जाता है। इसकी योजना भी ऐरातेश्वर मंदिर जैसी ही है, पर इस मंदिर में मूर्तिकारी कुछ ज्यादा दिखाई पड़ती है। स्थापत्य कला के साथ साथ चोल शासकों ने तक्षण कला और चित्रकला का भी भरपूर विकास किया। चोल राजवंश के अगले एपिसोड में हम उस पर भी बात करेंगे, साथ ही चोल शासकों की अंतिम पीढ़ी के बारे में भी हम जानेंगे। इस एपिसोड में बस यहीं तक। चोल राजवंश का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, अपनी राय हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।